नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारी इस बातचीत में, जिसमें हम लोग श्री पुनीत अरोड़ा जी के साथ आज किचन गार्डनिंग की बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, जिस दौरान हम सब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, और इस दौरान हम घरों में रहते हुए किचन गार्डनिंग के ऊपर जो हमारे सवाल हैं उनका जवाब लेने की सर से कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है।
थैंक यू जी, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।
कैसे हैं आप?
सब बढ़िया।
सर, ये बड़ा क्रूशल पीरियड है सभी के लिए, तो हॉबी से किचन गार्डनर्स हैं या नहीं भी थे, शायद लॉकडाउन में बन गए हैं, तो उनके कुछ सवाल हैं लगातार हमारे पास आए, मैं वो सवाल आपसे जानना चाहता हूँ।
जरूर जरूर, क्यों नहीं।
तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जो ये सीजन चल रहा है, अभी अप्रैल खत्म हो रहा है, मई आने वाला है, इस सीजन में बेस्ट क्या है किचन गार्डनिंग के अंदर कि हम क्या उगा सकते हैं अपने घरों में?
देखिए, इसमें चार पांच मोटी मोटी चीजें हैं, जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जो आप उगा सकते हो। पहली
जी
कैटेगरी तो है क्रीपर्स। क्रीपर्स जैसे बेल बेले इस महीने, अप्रैल और मई के महीने में बेले लग सकती हैं।
आप थोड़ा उदाहरण भी हमें दे सकते हैं कुछ बेलों का?
हाँ, तो बेले में जैसे करेले की बेल लग सकती है, तोरी की बेल लग सकती
हुँ।
है ना, लौकी की बेल लग सकती है,
हुँ।
पेठे की लग सकती है। तो हाँ, और ये मई के महीने में सेम फली है जैसे, वो उसकी बेल लग सकती है।
जी।
तो बेल के अलावा अगर आप थोड़ा सा आगे आएंगे, अगर कुछ लोगों ने पिछले महीने में, मार्च के महीने में, जैसे है कॉर्न्स होते हैं या जिनको हम मक्की कहते हैं, अगर वो लगाई हो गमलों में, दूसरे नंबर पे ये वो उसका वो चलता जाएगा। और कॉर्न के आसपास जो है, हम लोग मतलब कुछ जैसे हम समझाते हैं कि कंपेनियन प्लांटिंग करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ कंपेनियन प्लांटिंग कर सकते हैं। जैसे उसके आसपास टमाटर लगा सकते हैं, उसके आसपास बैंगन लगा सकते हैं। और अगर हमने पहले से नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर अगली जो चीज है वो मैं ये कहूंगा कि हम लोग बैंगन और जो है टमाटर लगा सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, आजकल तो लाल रंग का, पीले रंग का, मेहरून रंग का भी पेपर्स आते हैं, मतलब जो हमारी शिमला मिर्च
शिमला
जिसको
मिर्च
कहते हैं,
जिसको कहते हैं।
कैप्सिकम कैप्सिकम कहते हैं जिसको, तो
जी।
ये लगाया जा सकता है। और थोड़ा सा और आगे अगर अपने पास जगह है, तो हम लोग पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, है ना। तो यही मोटी मोटी ब्रॉड चार पांच कैटेगरीज हैं जो लगा सकते हैं, और कुछ अगले महीने मतलब मई के महीने के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं।
जी, मुझे जो आपकी बात से समझ आया वो दो तरह की कैटेगरीज इमीडिएटली समझ आया। पहला तो अगर हम पहले से किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, दूसरा जो हम अभी करने जा रहे हैं, तो
हाँ
उसमें आपने बताया कि अगर पहले मकई आपने लगा रखी है, कॉर्न लगा रखी है, तो या
हाँ
कोई ऐसा पौधा लगा रखा है जिसके साथ कंपेनियंस बनाए जा सकते हैं, यानी कुछ
हाँ
सहयोगी प्लांट ऐसे बनाए जा सकते हैं, तो आप
हाँ
मल्टीपल वैरायटी भी ले सकते हैं, तो
हाँ
ऐसा कुछ
बिल्कुल।
कंपेनियन जो आपने बताया, कुछ एक एग्जांपल देके थोड़ा बता सकते हैं हमें कि जैसे कॉर्न के साथ क्या लगाएं, किस चीज के साथ क्या लगाएं, कोई तीन चार ऐसे हमें कम्बिनेशन बता सकते हैं?
मेन कंपेनियन प्लांटिंग का मतलब ये है कि एक आपका मेजर प्लांट होगा, मेन प्लांट होगा, उसके आसपास जो है आप छोटे प्लांट्स लगाओगे, जो जिनको हम माइनर प्लांट्स भी कह सकते हैं। जैसे कॉर्न है, कॉर्न एक लंबी डंडी सी बन जाती है। वो जैसे अगर मार्च में मैंने लगाया, तो वो लंबा सा उसमें एक अभी तक 2-2.5 फुट का वो बन जाता है। तो उसके आसपास हम अगर टमाटर लगा दें, तो टमाटर को सहारा हो जाएगा उसमें चढ़ने का। तो एक ये कंपेनियन प्लांटिंग का एग्जाम्पल है। तो साथ में हमें जैसे ये गेंदे के फूल होते हैं, तो साथ में अभी क्या होता है कि बहुत सारी डिजीजेज हैं जो सॉइल बॉर्न डिजीजेज होती हैं, जो मिट्टी में से ही निकलती हैं, जैसे नेमाटोड्स हैं या कुछ कुछ फंगल डिजीजेज हैं जो इनको भी लग जाती हैं, बैंगन को लग जाती हैं, इनको टमाटर को लग जाती हैं, वो सॉइल बॉर्न डिजीजेज हैं। तो उनको थोड़ा सा उनको उनको थोड़ा कंट्रोल नेचुरली कंट्रोल करने का तरीका यही है कि उनके आसपास गेंदे के फूल लगाए जाए। तो ये भी एक कंपेनियन प्लांटिंग का एग्जाम्पल है।
तो
और हाँ जी हाँ
जी, तो
जी हाँ
ये
जी
आपने बताया कि कुछ प्लांट्स मेन होते हैं जिनको हम कहते हैं कि गमले में मेन प्लांट लगा हुआ, लेकिन उसके आसपास की जो जगह होती है उसमें कई तरह की प्लांटिंग की जा सकती है। और एक आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि
बिल्कुल
बायोलॉजिकल भी कंट्रोल किया जा सकता है पेस्ट का साथ लगा के। दूसरी
बिल्कुल
मुझे चीज़ ये बताएं, जैसे आपने मक्की का नाम लिया, मक्की काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, और जो कि आपने लिया वो क्रीपर्स होते हैं, वो भी काफ़ी लंबे चलते हैं, तो इसके गमले का साइज़ जो है लोगों के पास अलग अलग हो सकता है, तो कोई गमले के साइज का भी ध्यान रखना है उन।
देखिए गमले का साइज जो है, कोशिश तो करें आपके पास जितना बड़ा गमला हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि उतना उसको न्यूट्रिशन, उतना ज्यादा उसको फैलाव मिलेगा करने में। लेकिन कुछ छोटे मोटे मोटी थंब रूल्स हैं, जैसे धनिया है वो सिर्फ 4 इंच या 5 इंच के गमले में भी उग जाता है, और धनिया को तो हम लोग थोड़ी 3 4 दिनों में पानी में भी जैसे स्प्राउट्स करते हैं उस तरह भी उसको फुटा सकते हैं। तो एक तो सिंपल ये तरीका है, और दूसरे नंबर पे 4 से 6 इंच के बाद हमारे पास आते हैं 8 इंच के पौधे। जो 8 इंच के हैं वो उसमें हमें ये समझना चाहिए कि जगह कम है, तो हमारे को न्यूट्रिशन अच्छे से उसका जो गमला है वो ज़्यादा अच्छे से तैयार करना चाहिए। उसके अंदर हम लोग जैसे हमारे ये मैंने मैरीगोल्ड कहा है आपको, गेंदा कहा है वो उग सकता है मैरीगोल्ड, और बहुत इजी है उगाना। कोई भी फूल अगर आपको आसपास मैरीगोल्ड का दिखता है, गेंदे का दिखता है, तो उसको अगर आपने उतार लिया है वहां से तो उसको एक आधा दिन थोड़ा सा उसको ड्राई होने दिए। ड्राई होने के बाद उसको सिंपली उसके जो फूल पत्तियां हैं उनको उखाड़ के, उनको बाहर निकाल के, और उसके अंदर एक एक दो दो गमले में छोटे छोटे, ये 8 इंच के जैसे गमले हैं, इनमें लगा सकते हैं। तो वो अपने आप ही वो फूट जाएंगे और अपने आप ही उग जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास आते हैं जो 12 इंच के जो हमारे गमले हैं। 12 इंच के गमले में टमाटर भी लग जाता है। वैसे तो मैंने सिर्फ 6 इंच के गमले में भी टमाटर लगाया हुआ है, लेकिन 12 इंच का गमला इज रिकमेंडेड कि आप टमाटर और बैंगन के लिए लगाएं। और इससे नेक्स्ट जो आती है वो बड़े गमले हो जाते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि बहुत सारी बेलें लगनी है हमारी, है ना, जैसे पम्पकिन की बेल लगनी है, रिज गॉर्ड की बेल लगनी है, स्नेक गॉर्ड की बेल लगनी है, बिटर गॉर्ड की गॉर्ड लगनी है, जैसे करेला, और ये सब मैंने जैसे बातें की हैं। तो इनकी जो बेलें हैं, ये बेलों की जो जड़ है वो कई बार 6 6 फुट तक नीचे जाती है। तो इसमें थोड़ा सा गमला का हमारा थोड़ा लंबा हो, लंबा और चौड़ा हो, 2 2.5 फुट का हो तो प्रेफरेबल है। लेकिन मैंने ये भी देखा है, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट भी किया है कि वो 1 फुट वाले गमले में भी चल जाती हैं। तो इन सब गमलों में जब हम छोटे गमले यूज कर रहे हैं, और इसमें ये समझना चाहिए, एक अंग्रेजी का शब्द होता है इंटेंसिव फार्मिंग। तो यहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है एक छोटी सी जगह में, एक छोटे से 1 स्क्वायर फुट के गमले में, तो वो वाली चीज है। तो इसमें न्यूट्रिशन डालना, गमले को अच्छे से तैयार करना, खाद डालना, उसका ध्यान रखना, वो बहुत जरूरी हो जाता है।
और आपने जैसा बताया कि ये सारे आपने एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखे हैं, और गमले का साइज आपने कुछ छोटे में भी उगाया, तो अब मेरा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि तो गमले के अंदर जो आपने तैयारी करी, जो उसके अंदर न्यूट्रिशन आपने डाला, वो आपने किस तरह का माहौल गमले के अंदर बनाया? और दूसरा मेरा जो प्रश्न है वो इस लॉकडाउन की स्थिति को लेकर है। देखिए आजकल नर्सरीज तो खुली नहीं है, ना ही कोई बाहर निकल के वहां से अपने पौधों को ला सकता है, तो घर में जो सब्जियां आ रही हैं, घर में जो चीजें आ रही हैं, क्या उनके सीड्स को, उनके बीजों को भी इस्तेमाल करके कुछ किया जा सकता
हाँ देखिए, एक बहुत सिंपल सा तरीका है,
है?
और ये बहुत बहुत मतलब आप देखोगे कि कई बार सैर करते हुए आप देखोगे कि कहीं कूड़े में टमाटर उग गया हुआ है। स्पेशली मैंने टमाटर देखा है कि कई बार आप वॉक करते जाओगे कि कहीं आसपास कूड़े में टमाटर उगा हुआ है। वो उससे उसी उसी फिनोमिना से हमें सीखना चाहिए कि टमाटर अपने आप ही उग सकता है अगर हम अपने घर के जो बीज हैं वो डायरेक्टली, मतलब स्पेशल हमारे को किसी नर्सरी से या किसी दुकान से बीज लाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने, जैसे टमाटर के बीज तो यूं ही नहीं खाने चाहिए हमारे को, जिन स्पेशली जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, स्टोन से रिलेटेड हैं, तो वो बीज तो उसके अवॉइड ही करने चाहिए। और उसमें
सर,
एक नेचुरल पेस्टिसाइड सा होता है।
ये हमें थोड़ा सा और ज्यादा इस बारे में आपसे जानकारी चाहिए होगी कि जो सीड हैं टमाटर के, ये बहुत लोगों ने हमसे भी पूछा है कि टमाटर के बीज क्यों नहीं खाने चाहिए। तो मैं विषय निकल आया है एक अलग से, लेकिन मैं चाहूंगा कि 1 मिनट आप इस पर भी जानकारी हमें।
नहीं, उसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, उनको अंग्रेजी में लेप्टिन्स कहा जाता है। वो कुछ हमारे डाइजेशन को मतलब स्लो करते हैं,
ओके
और मतलब वो हमारे को, मतलब हमारे में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं जिनसे वो, एक्चुअली क्या है कि उनके अंदर एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, बायो पेस्टिसाइड होता है, टमाटर उसमें डालता है। वो बीज हमारे लिए नहीं है, वो पौधा ये चाहता है कि वो खुद कहीं पे अच्छे से फल फूल जाए, कहीं पे उग जाए, तो हम लोग उसको खा जाते हैं। तो वो थोड़ा सा उसके अंदर कुदरती बायो पेस्टिसाइड होता है। वो हमने 1 साल खाया, 2 साल खाया, जब हम 25, 30, 40 साल खाते हैं तो हमारे ऊपर वो उसका असर होना शुरू होता है। यूं तो लगता है कि हमें कुछ नहीं हुआ, हम कई चीजें खाते हैं तो हमारे को जुबान कट जाती है हमारी,
हाँ
है ना। तो वो एक तरह का प्लांट हमारे ऊपर बायो पेस्टिसाइड का अटैक ही कर रहा होता है, कि वो बता रहा है कि भैया मैं मर के भी तुम्हारे को बता रहा हूँ कि मुझे ना खाना अगली बार।
बहुत बढ़िया सर, आपने ये जो बात बताई है, एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, वो भी हमसे ये सब प्रश्न करते हैं कि जो भोजन हम लोग खाते हैं उसका हमारे शरीर पे क्या असर होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो देखा है टमाटर खाने से ये होता है जी, कच्चा टमाटर आप खाएं तो ऐसा होता है। दूसरा एक वीडियो देख लिया है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीड नहीं खाएं, तो बड़ा ऐसा माहौल, कंफ्यूजन वाला माहौल बन जाता है कि किस वीडियो की बात मानी जाए और किस वीडियो की बात ना मानी जाए। लेकिन आपने साइंटिफिक तरीके से बताया कि सीड्स हैं, अगर उनको हटा दिया जाए और बाकी उसका हिस्सा खा लिया जाए तो वो फायदेमंद हो सकता है। सीड्स में स्पेशली नुकसान हो सकता है, और वो भी तब नुकसान हो सकता है जब आप उसको लंबा समय खाते रहते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल।
जी जी
और तो ये हम लोग, मेरे घर में तो एक सिंपल सी प्रैक्टिस है कि हम लोग जो बीज होता है उसको, टमाटर के बीज को निकाल देते हैं, और बाकी जो है उसका पार्ट खा, उसको बाकी को यूज कर लेते हैं खाने पीने के लिए। तो जो बीज है हम लोग, फिर मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर वो कोई कोई गमला है या क्यारी में, उसमें उस बीज को घेरता जाता हूँ एक दो जगह पे।
जी जी जी
वो मैंने 3-4 स्पॉट बनाए हुए हैं, वहां पे उसको बीज को घेरता जाता हूँ। दूसरे नंबर पे एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, तो कुदरती तरीके से हमारे पास एक बीज भी आ गया और हमारा टमाटर भी उग सकता है।
जी 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 बहुत
और
बढ़िया।
टमाटर मैंने बताया ना, जैसे कूड़ेदान में, कूड़े में भी उगा होता है, आप देखोगे घूमते फिरते, तो
जी जी
उसको शुरुआत में कोई खास इतनी मतलब इतनी जरूरत नहीं होती है केयर की। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अब हम आज की डेट में जितना टमाटर खा रहे हैं, तो वो जो उसका बीज है वो मॉडिफाइड है, वो हाइब्रिड है या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, और वो इसी तरह डिजाइन किया गया है कि उसकी क्वालिटी क्वालिटी चाहे रहे ना रहे, लेकिन वो 15 दिन 20 दिन के लिए खराब ना हो, मतलब वो ट्रांसपोर्ट हो पाए। तो वो इस तरह वो जेनेटिकली मॉडिफाई हुआ है। तो ऐसे जो बीज होते हैं या ऐसी जो चीजें होती हैं, वो उनको थोड़ी ज्यादा केयर चाहिए, तो इसीलिए हमारे को वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है अपनी किचन गार्डनिंग में उसको उगाना। तो मैं तो उसमें, मतलब मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला सा बनाया हुआ है कि मैं बहुत सारे बीज घेर देता हूँ, उसमें से जो सरवाइव कर गया, जो प्लांट बहुत हेल्दी है और बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो उसी को फिर हम लेके आगे चलते हैं, और उसी में से 2-4, मतलब जो उस महीने की जो हो सकती है हमारी हार्वेस्ट, उसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, डिजायर करते हैं।
जी जी बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा मुझे आप ये बताएं कि आपने टमाटर तो बताया कि नेचुरली उग जाता है।
दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा पेपर्स की और मिर्ची की। मिर्ची भी एक पेपर होता है। मेरे घर में जिसको हम शिमला मिर्च करते हैं कहते हैं, या कैप्सिकम कहते हैं, वो भी बहुत यूज होती है। तो उसको, उसका जो बाहर का जो हिस्सा है उसको निकालने के बाद, उसके बीच का जो पार्ट है उसके अंदर आप देखोगे काफी सारे बीज होते हैं सफेद रंग के, है ना। तो हम लोग उसमें भी मैंने यही बिल्कुल सिस्टम अपनाया हुआ है कि वो बीज लेता हूँ और उसको एक जगह पे घेरता रहता हूँ मिट्टी में, वो देखिए मिट्टी इतनी समझदार होती है कि अगर उसमें कूड़ा गिरोगे तो उसको गला देगी, उसको अच्छे से डिकम्पोज कर देगी, लेकिन उसके अंदर मिट्टी के अंदर अगर बीज गिरोगे तो उसको फुटा देगी, उसमें से जिंदगी निकल आएगी। तो एक चीज और मैं करता हूँ, मतलब समझनी चाहिए, मतलब ये एक सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बातें हैं। जैसे मेरा एक गमला है जिसके अंदर बहुत अच्छे से पेपर्स उग जाते हैं, है ना, जैसे मेरे कैप्सिकम उग जाता है, गमला है जिसमें मेरा था कि पिछले पिछले सीजन में मेरे बैंगन इसमें या इसमें टमाटर या इसमें वो चीज बहुत अच्छे से हार्वेस्ट आई थी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसी में जाके अपना कैप्सिकम का बीज गेरूंगा जहां पे मेरा कैप्सिकम बहुत अच्छा उगा था, आप समझे। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3-4 गमले हैं जिनमें मेरी शिमला मिर्च बहुत अच्छे से उगी थी,
जी।
तो वो शिमला मिर्च उगी हुई है वहां पे, मेरा उसका फल फ्रूट अच्छा आया था, लेकिन मैं बीज वहीं पे जाके गिरूंगा, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट सीजन में वहां पे मैं दूसरा प्लांट लगाऊं एज ए रोटेशन, लेकिन मैं जब बीज है वो उसी के नीचे गिरूंगा, क्योंकि वहां पे प्रूवन है कि ये जो मिट्टी का एनवायरनमेंट बना हुआ है, ये जो मिट्टी है ये इस तरीके से बनी हुई है कि इसके अंदर हमारा जो है जो पेपर का बीज है वो अच्छे से फूटेगा, क्योंकि पेपर यहाँ पे अच्छे से उगा था। तो मतलब लॉजिकली आपको क्या करना चाहिए, अपने घर के अंदर ही अपने गमलों में जगह आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पे अच्छे से उग रही है, तो क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट भी होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट भी होता है, किसी एरिया में हमारे हमारे गार्डन के किसी एरिया में हो सकता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्लांट अच्छे से उगता है और किसी जगह नहीं उगता। उसका कारण यह है कि हर फुट 2 फुट पे हमारा मिट्टी का जो पीएच है या उसकी जो रेशियो है सॉयल सैंड सिल्ट की वो डिफरेंट हो सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉजिक तो हमारा बड़ा सिंपल सा बनता है कि जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट हमारा बना हुआ है जहाँ पे हमारी चीज बहुत अच्छे से उग रही है, तो मैं उसी जगह पे अपने नए जो बीज हैं वो वहीं पे गेरूंगा। दूसरा मैं ये थोड़ा सा एक ध्यान रखूंगा, जब भी मैंने पॉटिंग करनी है तो मैं अभी पॉटिंग की लेयर्स के कॉन्सेप्ट में भी नहीं जाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा हमारी बात। तो मोटा मोटा थंब रूल हमारा ये है कि जितने प्लांट्स हैं जिनके अंदर पल्प ज्यादा होता है, पल्प की रेशो ज्यादा होती है, मतलब गुर्दा ज्यादा होता है, और वो क्रीपर्स हैं, मतलब वो बेल हैं और क्रीपर हैं, वहां पे हमारे को प्रेफरेबली जो सैंड की रेशियो है वो ज्यादा रखनी चाहिए। और जो पौधे हैं जिनको पानी बहुत पसंद है ना, वो पानी बहुत पसंद है, तो उसके अंदर क्ले की रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पुदीना है तो पुदीना को पानी बहुत पसंद है, तो इसका मतलब उसकी मिट्टी में क्ले कंपोनेंट ज्यादा होगा, तभी वो पानी रिटेन करेगा ना। तो इसी तरह मतलब हमारे को थोड़ा सा लॉजिकली सोचना चाहिए कि अगर किसी पौधे को बहुत पानी चाहिए तो उसको मतलब मिट्टी भी कुछ उस तरह की चाहिए जिसमें पानी रुका रहे। तो जहाँ पे जो जिन पौधों को पानी नहीं चाहिए, कम चाहिए, उसके अंदर हम रेशियो जो है सैंड की बढ़ा सकते हैं। तो मतलब ये एक दो थंब रूल हैं, इनके ऊपर चलना चाहिए। अब जैसे भिंडी है, भिंडी के अंदर उसका जो पल्प रेशियो है या जो भी है उसका जो स्टार्च वाला पार्ट है वो मतलब अगर उसको बैंगन के पल्प से कंपेयर किया जाए या टमाटर के पल्प से किया जाए वो कम होगा, क्योंकि वो पतली सी होती है, तो उसके अंदर लोमी सॉइल चल जाएगी, सैंडी लोमी सॉइल चल जाएगी, और ये जो लेडी फिंगर होती है जिसको ओकरा भी कहते हैं, तो वो तो वैरायटी ऑफ सॉइल्स पे उग जाती है। तो मतलब ये इन बिटवीन सी सॉइल है जो जिसके ऊपर मतलब जिसके अंदर सैंड और लोम सॉइल की अगर रेशो 50-50 भी हो या 70-30 भी हो, 30-60 भी हो, तो वो फिर भी चल जाएगी। तो ये इस हिसाब से हमारे को लॉजिकली सोचना चाहिए और हमारे को अपना प्लांटिंग करनी चाहिए। बाकी रही स्पेशली बात लॉक इन, मतलब लॉक इन पीरियड में जो हम लॉकडाउन पीरियड में हम क्या करना चाहिए, लॉकडाउन पीरियड में हमारे को मैं ये कहूंगा कि हमारे को जैसे धनिया है, जैसे माइक्रोग्रीन्स है, अब स्प्राउट्स उगा के जिन जिन बीजों का स्प्राउट बन सकता है वो हमारी शुरुआत हो सकती है गार्डनिंग की, उसको हम माइक्रोग्रीन्स भी कहते हैं। तो अब माइक्रोग्रीन्स हमारे दो तरीके से उग सकते हैं, एक तो है कि प्योरली पानी के ऊपर, एक है कि थोड़ी सी सॉइल के ऊपर। अगर लॉकडाउन के कारण आप गमले भी नहीं खरीद पा रहे हो, मिट्टी भी नहीं खरीद पा रहे हो, तो लेकिन आप घर में टैप वाटर तो आता होगा ना, पानी आता होगा, तो आप पानी में कोई टॉवल लेके, कॉटन का कपड़ा लेके, जिसमें पानी थोड़ी देर के रिटेन रहता है और उसकी इवेपोरेशन होती रहती है साथ साथ पानी की, और साथ में हवा लगती रहती है, तो ऐसे में आप बहुत सारे बीज हैं जिनको आप दालों के और कई चीजों के जो बीज हैं वो आप उनको हमेशा स्प्राउट करके खाएं, तो वो भी एक माइक्रो किचन गार्डन हो गया आपका एक तरह का। स्प्राउट करने से जो अभी हम बात कर रहे थे बीजों में, बीजों में एक नेचुरल पेस्टिसाइड होता है, बायो पेस्टिसाइड होता है, एक पॉइजन होता है, प्लांट उसमें खुद डालता है पॉइजन ताकि उसको कोई और खाए ना और वो खुद आराम से फूट सके कहीं पे। वो उससे क्या होगा, वो बायो पेस्टिसाइड जो है उसको बायोलॉजी वाले इनहिबिटर्स कहते हैं, वो अपने आप ही बायो पेस्टिसाइड्स हट जाएंगे।
जब एक प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, सीड जर्मिनेट कर जाता है, वो निकल आता है अपने फूल से बाहर और पौधा बनने लगता है, तो उसके जो इनहिबिटर्स होते हैं, जो बायोपेस्टिसाइड्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, उनकी रेशो कम हो जाती है, तो
हाँ
वो खाने
बिल्कुल,
लायक बन जाते हैं।
हाँ वो खाने लायक हो जाते हैं और उसमें साथ में एंजाइम्स आ जाते हैं, अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, विटामिन मिनरल्स, और उसकी मतलब जो एक तो उसका 5 गुना वेट बढ़ जाता है, मतलब मान लो 1 ग्राम का आपका बीज था तो वो 5 ग्राम का हो जाता है, तो वो वेट गेन कर जाता है, इसका मतलब उसके अंदर नया बायोमास आ गया, तो बायोमास में ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें हैं जो इजीली मतलब हम ले सकते हैं नेचुरली, मतलब क्योंकि बीज के अंदर ही इतनी पोटेंसी होती है कि वो नई नई जिंदगी को खाना प्रोवाइड कर रहा है उस टाइम, जो नया हमारा वो निकल रहा है, पौधा निकल रहा है। तो एक मतलब बहुत सारे मतलब हम जो है स्प्राउटिंग अगर करें और उससे उसके थ्रू हम अपना एक अपने आप को समझें कि हम अपना एक माइक्रो किचन गार्डन तैयार कर रहे हैं और वहीं से शुरुआत करें अपनी किचन गार्डनिंग की सीखने की और उसको करने की, तो वो लोग मतलब यहाँ से बेस्ट तरीका है हमारी जो मतलब यूटिलाइज करने का बायोमास को अपनी बॉडी बिल्ड करने का। आपने सुना होगा कि बहुत सारी कंपनियां हैं वेट गेन और वेट लॉस के लिए बायोमास नाम की प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो ये एक बायोमास एक ऐसा मतलब ये प्रोडक्ट आप खुद घर में बना सकते हो और बहुत इजीली बना सकते हो। दूसरा है तरीका के इवन जैसे धनिया है, मैं तो धनिया में तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आपके पास अगर मुट्ठी भर, 2-3 मुट्ठी भर भी अगर आपके पास वो है थोड़ी सी खाद है, कोई वर्मी कंपोस्ट है या कुछ है, तो आप उसको हल्का सा उसके अंदर नमी लाके उसके अंदर बीज रख दो और उसको एक सिंपल से डार्क एरिया में रख दो, तो डार्क एरिया रखने के लिए उसकी एक पोटली बना सकते हो, और तीसरे चौथे दिन आप देखोगे जब उस पोटली को खोलोगे तो उसके अंदर सारा बीज फूट चुका होगा, फिर उसको फैला दो।
जी। तो सर, आपसे बातचीत बहुत ही प्रोडक्टिव है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक सीरीज में हमें आपसे बात करनी पड़ेगी। एक प्रश्न अभी अनआंसर भी रह गया कि हम गमले में क्या क्या डालें, लेकिन वो हम इस बातचीत में नहीं लेते, उसको अगली बातचीत के लिए रख लेते हैं, ताकि
बिल्कुल
हमारी जो ऑडियो फाइल है वो ऑडियो फाइल भी इस लेवल की बने, ताकि आगे शेयर भी की जा सके। आपने बहुत
बिल्कुल
कुछ बताया इस लॉकडाउन के दौरान, और मैं सभी सुनने वालों से अपील करूंगा कि इस तरह की और भी सीरीज में फाइल्स आपको हमारी वेबसाइट्स, हमारी ग्रुप पे मिल जाएंगी। तो हमारी वेबसाइट है pneetarora2000.com, जिस पे ये फाइलें अवेलेबल हो जाएंगी, और हमारा ग्रुप है फेसबुक के ऊपर सोशल सब्सटेंस के नाम से। आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी कोई कमेंट हो बता सकते हैं, थ्रेड के ऊपर हमें अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो अरोड़ा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
थैंक यू जी, थैंक यू।
जी
हाँ
जी